السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. آمين. ہم اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سارا دن جو نام آپ نے سیکھا ہوگا اس کو سوچتے ہوں گے اور اس پہ غور و فکر کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہوں گے. اور اسی لیے ہم یہ نام سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم جب اپنے ارد گرد دیکھیں یا اپنے جسم میں، اپنے گھر بار میں، اس کائنات میں یا اپنے ساتھ ہونے والے واقعات میں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جھلک نظر آئے. جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام سیکھا الحکیم، تو آپ نے اس پر غور کیا. اب کوئی واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ یہ اس الحکیم کی حکمت ہے. جو واقعات ناخوشگوار ہوں ان پر یہ کہنا بڑا مشکل لگتا ہے، اس کے لیے بڑا دل چاہیے. اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اس صفت پر کامل یقین ہو. بعض دفعہ ہم خود حکمتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب سمجھ نہیں آتی تو ہمارا دل گھٹنے لگتا ہے، مایوس ہونے لگتے ہیں. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو وہی بہتر جانتا ہے، مگر ہم بھول جاتے ہیں. جیسے مثلاً آپ نے کوئی ٹرین لینی تھی، وہ مس ہو گئی. اس وقت آپ کہتے ہیں کیا پتا اس میں بھی کوئی بہتری ہو، مگر جب آپ کے سارے ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو مشکل اٹھانی پڑتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کیا خیر ہوگی. آپ ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں، کیا حکمت ہو سکتی ہے، میں ہی رہ گئی، سارے چلے گئے اور مجھے اتنی مشقت اٹھانی پڑی. اسی طرح سب صحت مند غذا کھاتے ہیں اور سبھی ٹھیک رہتے ہیں، اور میں وہی غذا کھا کے بیمار ہو جاتی، تو دل میں خیال آتا ہے کہ اس میں بھلا کیا بہتری ہو سکتی تھی، میں نے بھی تو وہی کھائی، میں ہی کیوں بیمار ہوئی، باقی سب تو اچھے بھلے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. اس طرح سب کے بچے لائق نکل آتے ہیں، مگر ہمارا بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں چل رہا، تو ہمارے ذہن میں سوچ آتی ہے کہ ان سب کے بچے تو اتنے آگے نکل گئے، بھلا میرے نصیب میں ایسا بچہ تھا جو اتنا زیادہ ذہین نہیں ہے. بے شمار ایسی باتیں روز ہمارے سامنے ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے، مایوسی بھی ہوتی ہے، اور سمجھ بھی نہیں آتا، کنفیوزڈ بھی رہتے ہیں. ایک طرف یہ کہتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہر کام میں حکمت ہے، دوسری طرف ہم سوچتے رہتے ہیں ہمیں کوئی حکمت نظر ہی نہیں آتی. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کل کا علم نہیں رکھتے کہ کل کیا ہونا ہے، اور جب ہم حکمتیں دیکھتے نہیں ہیں کسی چیز میں، ہمیں بظاہر اس وقت سمجھ نہیں آتی، تو ہمیں چونکہ آگے کا علم ہی نہیں ہے تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ آگے کیا ہوگا، لہٰذا ہم سوچ لیتے ہیں کہ کچھ ایسی خاص حکمت نہیں ہے، کوئی خیر نہیں نکلنی، چونکہ ہم آج کو دیکھ رہے ہیں، کل کو نہیں دیکھ سکتے. دوسرے یہ کہ جب بہت تلاش کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد بھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم जो सोच रहे हैं वो इस दुनिया के तनाजुर में हिकमतें देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगली दुनिया की हिकमतें, अगली दुनिया में जो कुछ होना है वो तो हमारी सोच में आता ही नहीं है। हम यहां के फायदे और यहां के नुकसान को ही समझते हैं कि इसी में हिकमत है। आखिरत में इसका क्या फायदा है वो हमने कभी सोचा ही नहीं। क्या कभी इस तरफ भी हमारी सोच जाती है कि मेरी ट्रेन अगर निकल गई और मुझे परेशानी उठानी पड़ी, बाकी सब हंसी खुशी मंजिल पे पहुंच गए, तो मैंने जो यहां सब्र से इंतजार किया उसकी वजह से जो मेरे गुनाह माफ हो गए हैं वो मेरे कभी जहन में ही नहीं आता। सब तंदुरुस्त हैं मगर जो ये एक मैं ही बीमार हुई, इस पर जितनी तकलीफ मुझे उठानी पड़ी और मैंने जितना सबर किया, उस पर दूसरों के दर्जे थोड़ी बुलंद हुए, मेरे ही बुलंद हुए हैं ना। सबके बच्चे आगे निकल गए, मेरे नसीब में कम जहीन बच्चा आया, तो इस आजमाइश में जो मुझे अल्लाह ताला ने डाला इस पर पूरा उतर के जन्नत में मेरा ही मकाम ऊंचा हुआ ना। काश हम अपना आमालनामा देख सकते होते तो ये प्लस और माइनस हमें नजर आ जाता, तब हमें पता चलता कि एक थकावट भी जो हमें होती है, एक जर्रे बराबर तकलीफ भी जो हमें उठानी पड़ती है, एक छोटी सी परेशानी भी जो हमारे रास्ते में आती है, वो हमारी जिंदगी में हमारे लिए खैर के कितने दरवाजे खोलती है। क्योंकि हमारे आमालनामे से बहुत सारे गुनाह वाइप आउट हो जाते हैं, वो गुनाह जिनकी सजा हमें मिलनी थी वो हमारे रब ने करम किया कि ये तकलीफें भेज के, इन परेशानियों में डाल के, इन अजाबों को खत्म कर दिया। अगर हम देख सकते होते अपना अब आमालनामा तो हम कह उठते कि शुक्र है ये परेशानी आ गई थी, वरना मैं तो बच ही नहीं सकती थी। मेरा रब तो मुझ पे बड़ा मेहरबान है, आपको इन्हीं परेशानियों और इन्हीं गमों में रब की रहमत नजर आना शुरू हो जानी थी, लेकिन चूंकि देख ही नहीं सकते तो यहां पे सिवाय हमारे पास गिले और शिकवों के कुछ नहीं होता। और आखिरत में जो दर्जे बुलंद हो रहे होते हैं इन परेशानियों की वजह से, जो प्रोमोशंस मिल रही होती हैं वो भी नजर नहीं आती, क्योंकि तो आमालनामा हमें क्या पता इसमें क्या हो रहा है, वरना हम देख लेते तो हम खुश होके लोगों को दिखाते कि देखो इस आजमाइश से गुजरी हूं, ठीक है तकलीफ तो हुई मगर ये देखो मेरी प्रोमोशन भी तो हो गई है ना। क्या करें कि यही तो हमारा इम्तिहान है कि हमने बिन देखे ये मानना है कि रब के हर फैसले में हिकमत है, हर फैसले में खैर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया कि मोमिन का तो कोई मामला खैर से खाली है ही नहीं, हर मामले में उसके लिए खैर है, लेकिन हमें यकीन ही नहीं आता क्योंकि हम अपनी ऐनक से देखते हैं, हम अपने हिसाब किताब करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, हमें लगता है कि ये दुनिया में फायदा मिल रहा है, सब अच्छा नजर आ रहा है, जो हमारे सामने है, जो हमारी ये आंखें देखती हैं वो ही बस फायदा है, और जो हमारी नजरों से ओझल है उसका हमें कोई बिल्कुल फिक्र नहीं होती या परवाह नहीं होती, या हम उस तक हमारी नजर ही नहीं जा पाती। जब हमें ये वादे मिल गए कि जरा जरा सी तकलीफ पे, एक कांटा चुभने पे भी, ये क्या एक छोटी सी चीज है ना कांटा चुभना, उस पे भी तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश होती है, तो ये जो बड़ी बड़ी बलाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं, टेंशन्स आती हैं, इतनी इतनी गमों के पहाड़ टूटते हैं, आप सोचते नहीं कि कितने इसके ऊपर गुनाहों का सफाया होता होगा। ये उसको समझ आएगी जिसको ये परेशानी हो कि गुनाह बहुत हैं, कैसे ये मिटेंगे, ये तो कयामत के दिन जाके पता चलेगा कि ये दुनिया की मुसीबतें जो थी ये भी मेहरबानियां ही थी रब की तरफ से। इसीलिए सहाबाए कराम किसी के ऊपर मुश्किल नहीं आती थी तो सोचते थे कि क्या मामला है इसके साथ, उनको इस पे तश्वीश होती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ना कि अल्लाह ताला उनको आजमा लेता है जो उसके प्यारे होते हैं, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनको आजमाइश में डाल देता है, क्योंकि अल्लाह ताला उनको पाक साफ करना चाहता है, अल्लाह ताला उनको बुलंद करना चाहता है, ऊपर करना चाहता है, उनको जन्नत के आला दर्जे देना चाहता है। लेकिन हमें चूंकि वहां तक हमारी नजर की इंतहा है ही नहीं, हमारी नजर की इंतहा सिर्फ दुनिया पे ही खत्म हो जाती, तो हम यहीं पे जोड़ तोड़ कर करके बेचारे देखते ही रह जाते हैं कि फायदा हुआ क्या, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। जबकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है असान तक रहू शही अमा खैरुल्लकुम, हो सकता है तुम्हें कोई चीज बुरी लगती हो लेकिन उसमें ही तुम्हारे लिए खैर हो, भरोसा करो ना कि इसमें खैर है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। यहां अल्लाह ताला की सिफते अलीम को सोचें, उस पे भरोसा करें, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते, तो मैं नहीं जानती, उसको पता है मेरे लिए क्या बेहतर, मैंने अपना मामला उसके सुपुर्द किया है, फिर मुझे क्या फिक्र होनी चाहिए, वो जो अल वकील है, फिर वहां पे अल्लाह ताला का ये नाम सोचें जिसके सुपुर्द मामलात करके इंसान बेफिक्र हो जाए, इसी को तो तवक्कुल कहते हैं, वकील बनाना कहते हैं, कि भरोसा किया किसी ऐसी जात पे कि जिसके बाद दिल मुतमईन हो जाए। तो हम दुनिया में अगर अच्छा वकील बना लेते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, किसी को बड़े पैसे देकर बड़ा महंगा वकील कर लेते हैं, तो हम बड़े मुतमईन हो जाते हैं कि हमने बड़ा ही अच्छा वकील कर लिया, अब फिक्र की बात नहीं है। तो जो अल्लाह ताला को अल वकील बना ले, फिर इस पर भरोसा करे, फिर वो कैसे फिक्रमंद हो सकता है, फिर तो उसकी परेशानियां ही खत्म हो गई, क्योंकि अब उसने अपना मामला किसके हवाले कर दिया। तो अल्लाह ताला के ये नाम हमें पुरसकून कर देते हैं, अल्लाह ताला के ये नाम मुतमईन कर देते हैं, इंसान को बेफिक्र कर देते हैं, हर एक की मोहताजी से आजाद कर देते हैं। वो शख्स कैसे परेशान हो सकता है जो अल्लाह ताला के इन प्यारे नामों को जानता हो और इन पे ईमान रखता हो। तो इन नामों को जब भी आप लें तो इस तरह से लें कि आपको समझ हो कि आप क्या कह रहे हैं, और इसके बाद बड़ी मोहब्बत के साथ ईमान रखें इनके ऊपर, और मजबूत ईमान, जितना आपका ईमान मजबूत होता जाएगा इन नामों के ऊपर, उतना ही आप देखते जाएंगे कि अब दुनिया में आप सबसे खुश इंसान हैं, आप परेशानियों के बावजूद हर परेशानी से आजाद हैं, आप डिप्रेशन में नहीं जाते और आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, और आप का दिल ठहरा रहता है, बेचैन नहीं रहता। आज भी हम जो अल्लाह ताला का नाम देखने वाले हैं उसमें इतनी उम्मीद है, अगर आप इस नाम के ऊपर गौर करेंगे तो जितना गौर करते जाएंगे आपके लिए, आप देखेंगे कि सुकून और इत्मीनान के दरवाजे खुलते जाएंगे। ये अल्लाह ताला का नाम है अल-कदीर, अल-कदीर कौफ दाल रा से, कुदरत वाला भी यानी जिसके पास पावर है हर काम करने की, और सही सही अंदाजा लगाने वाला भी, इसी से तकदीर निकला है, कदर भी इसी से निकला है, कौफ दाल रा इसका रूट है ना। अल-कदीर वो है जो कुछ भी कर सकता है, इस कदर पावरफुल, इस कदर कुर्वत वाला। अल-कादिर भी ठीक है, लेकिन अल-कदीर में एक्सट्रीम पावर का माना है, वो जिसकी पावर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसकी कोई हद नहीं है पावर की। अल्लाह ताला की ये तमाम सिफात, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि तमाम में परफेक्शन है, तो अल्लाह ताला के इस नाम में भी परफेक्शन है। आज का इंसान देखें तो इस कदर एरोगेंट हो चुका है ना कि वो खुद को ही समझता है कि मैं ही कुदरत रखता हूँ हर चीज पे, और चूंकि मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली है लिहाजा हम तो सब कुछ कर सकते हैं, तो कोई खुदा की तो जरूरत है ही नहीं। पहली दफा आपको पता है जब टाइटैनिक भेजा गया था तो ये दावा किया गया था कि ये शिप वो है जिसको खुदा भी नहीं डुबो सकता, और फिर आपने देखा ना कि पहले सफर में ही वो डूब गया। लेकिन इस नादान इंसान को फिर भी समझ नहीं आती वो गिव अप नहीं करता, अपनी कमजोरी का इजहार नहीं करता अपने अल्लाह के आगे। वो समझता है कि बस मुझे खुदा की क्या जरूरत, मैं तो तरक्की के इतने मनाजिल तय कर चुका हूं कि अब हमारी जिंदगी में नऊजुबिल्ला अल्लाह ताला की तो कोई जगह ही नहीं रही, हम खुद ही सब कुछ कर लेते। और जितना इंसान खुद को ज्यादा समझता है उतना ही अल्लाह ताला की कुव्वत को अंडर एस्टिमेट करता है, उसको लगता है कि वो उसकी पावर क्या, हम तो खुद ये सब ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, हम कहाँ तक पहुंच गए, साइंस ने क्या तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी देखो आजकल क्या हो गई। अपना ही उसको दिल के अंदर एक रोब और एक अपना ही एक बड़ाई का एहसास उसको वहां तक पहुंचा देता है कि अपने आप को ही खुदा समझने लगता। जबकि अगर देखें तो इंसान अपने जिस्म पर भी खुद कुव्वत नहीं रखता, ताकत नहीं रखता, किसी और चीज की ताकत का तो क्या कहना, वो खुद भी अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाता। अब देखिए इंसान चाहता है उसके नाखून ना बढ़े, नाखून बढ़ते जा रहे हैं, वो चाहता है कि इंसान के उसकी बिनाई कमजोर ना हो, कमजोर होती जा रही है, वो चाहता है कि कभी बूढ़ा ना हो, बूढ़ा होता जाता है, वो चाहता है मेरे बाल ना गिरे, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, चाहता है बीमार ना हो, बीमार हो जाता है, वो चाहता है मैं मरूं ही ना, फिर भी मर जाता है। तो ये तो खुद भी अपने ऊपर कादिर नहीं है, इसकी ताकत तो अपने ऊपर भी नहीं चलती, किसी और पे क्या चलेगी। इतनी सी सिर्फ ताकत है कि राइट ऑफ चॉइस अल्लाह ताला ने दे दिया, उसके बाद इंसान ने समझा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हर चीज का मालिक बन बैठा। और फिर अल्लाह ताला दिखाता है अपनी कुदरत के मुजाहरे दिखाता है, इंसान अगर समझना चाहे तो समझे ना। आपने देखा 2020 में किस तरह से ये कितना सब माइक्रोस्कोपिक कोविड आया जिसने सारी दुनिया को हिला दिया, पूरी दुनिया को शट डाउन कर दिया। अल्लाह ताला ने समझा दिया ना तुम ताकतवर नहीं हो, अल्लाह ताला ताकतवर है, हर कुदरत का मालिक वो है। तो सोचिए इस बात को, और इसको इस तरह अल्लाह ताला की कुदरत को देखें। ये समझने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप मसलन एक जगह पे गए हैं, वहां पे बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, आप बड़े मुतासिर होते हैं, सोचते हैं ये बिल्डिंग्स ये ब्रिजेस वाकई ये बनाने वाला कितना जीनियस होगा, इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग है उसका कितना नॉलेज होगा, उसके पास कितनी ताकत होगी, इतना लोहा इतना सरिया इतना सब कुछ उठा के और फिर ये सब कुछ बनाना कितनी बड़ी बात है, आप बड़े इंप्रेस होते हैं, आपके मुंह से वाह निकलता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि वो इंसान जिसने ये बनाया उससे आप इंप्रेस हो रहे हैं कि वो कितना ताकतवर या कितना इल्म वाला या महारत वाला है, तो जिसने इस इंसान को बनाया वो किस कदर ताकतवर होगा और कितना इल्म वाला होगा। इसने तो ये एक बिल्डिंग है बना दी, ब्रिज बना दी, एक शहर खड़ा कर दिया, तो जिसने ये कायनात खड़ी कर दी उसकी ताकत का अंदाजा आप नहीं कर सकते। इतनी वसी कायनात कि वो साइंसदान जो मुसलमान नहीं है वो भी कह उठे हैं कि कोई बहुत ही पावरफुल हस्ती है जिसने ये सारा निजाम बनाया हुआ। वो कहते हैं ये गैलेक्सी जिसको हम देखते हैं जिसमें 100 बिलियन सितारे हैं, 100 बिलियन, वो कहते हैं हर सांस में अगर इंसान एक सितारे को गिनने लगे वो मर जाएगा, सितारे गिन नहीं सकता, हर सांस में अगर गिने। वो कहते हैं ये हमारी जो गैलेक्सी है ये तो गर्द के एक जर्रे की तरह है, जो हमारी ये कायनात जिसको हम कहते हैं, जितनी तहकीक कर रहे हैं रोज नए इंकशाफ उनके सामने आते हैं, और वो खुद उनकी अकलें दंग रह जाती हैं, वो गिव अप कर देते हैं कि ये क्या हैरत अंगेज है। वो कहते हैं ये कायनात इतनी वसी है, और बकौल उनके चूंकि वो तो खुदा को मानते नहीं, वो कहते हैं ये बड़ी जीनियस है ये कायनात, जीनियस कायनात नहीं है, इसको चलाने वाला है बनाने वाला है, यानी बहुत ज्यादा अकलमंद, यानी बहुत जिसकी पावर भी है इल्म भी है। वो कहते हैं हमारी फिजिक्स के लॉज तो इस कायनात के सामने ऐसे हैं जैसे बच्चों ने चंद लकीरें खींची हो, और ये मैं अपनी बात से नहीं आपको बता रही, मैं उनकी बातें कोट कर रही हूं। कहते हैं ये लॉज फिजिक्स के जितने आप पढ़ते हैं ना, वो सारे कहते हैं इस तरह है जैसे कि एक बच्चे का खेल हो, ये तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, और बिलियंस ऑफ ईयर्स तो कुछ भी नहीं है इस कायनात में, एक लम्हे की तरह है, और फासले, जिंदगियां खत्म हो जाए, फासले नहीं खत्म होंगे, इसके बावजूद इंसान सोचता है वो चांद तक पहुंच गया, उसने कमाल कर दिया, उसने तो अभी इस पूरी जमीन को भी एक्सप्लोर नहीं किया, इसके समुद्रों की गहराइयों तक नहीं पहुंचा, कायनात की तो क्या बात है, फिर भी वो अपने आप को खुदा समझने लगा है, कुदरत वाला समझता है। अगर आप इस कायनात पे गौर करने लगे तो आप खुद कह उठेंगे जिसने ये बनाई है वह वाला कुल्ली शैन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कुराने करीम में, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम, अन करीब हम इनको निशानियां दिखाएंगे आफाक में भी, कायनात में भी, और इनके अपने नफ्सों में भी, इनके अपने जिस्मों में भी, रोज रोज नई नई बातें सामने आती हैं, इंसान सोचता है आज से पहले तो पता ही नहीं था। तो अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन करें, अल-क़दीर पर, ये जो हमारी कभी सोच आती है ना, वाकई क्या अल्लाह ताला ये कर सकता है, ये ऐसा हो सकता है, कैसे होगा। तो एक किस्सा आता है सूरत अल-बकरा में कि एक आदमी थे, वो एक तबाहशुदा बस्ती से गुजरे, तो उन्होंने सोचा अल्लाह ताला इसको कैसे जिंदा करेगा, बिल्कुल तबाह हो चुकी थी ना, कैसे करेगा जिंदा। अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी और 100 साल तक उनको मुर्दा ही रखा, और फिर 100 साल के बाद उनको उठाया और पूछा कितनी देर तुम मरे रहे, वो बोले दिन या दिन का कुछ हिस्सा, फरमाया नहीं 100 साल, मगर खाना वैसे ही फ्रेश था, गदा जो था उसकी हड्डियां हो चुकी थी, गोश्त भी खत्म हो चुका था 100 साल में, उसको जिंदा करके सामने खड़ा कर दिया। तो वो बोल उठे मुझे यकीन हो गया अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला। अब आप खुद सोचें हमारे दिमागों में कितनी दफा यही बात नहीं आती, कैसे करेगा अल्लाह ताला, कैसे ये सॉल्व होगा मसला, ये तो सब कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल, फिर ये कैसे होगा, किसी बीमारी को सुन के सोचते हैं ये कभी ठीक हो सकता है, कैसे ठीक होगा। इसी तरह उन्होंने भी कहा था ये कभी कैसे जिंदा होगी बस्ती, तो अल्लाह ताला ने जिंदा करके दिखा दिया। तो आप कभी देखते हैं या गौर करते हैं अपनी जिंदगी में, कभी ना कभी तो जरूर ऐसे वाकयात हुए होंगे जिसमें आपने भी सोचा होगा ये मसला कैसे हल होगा, फिर अल्लाह ताला ने कैसे हल करके दिखाया ना, फिर आपने उस जगह पे अल्लाह ताला को पहचाना या नहीं उसके अल कदीर होने को। मेरे सामने कई दफा ऐसे वाकयात आए हैं कि जिनको लोग कहते थे नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, और मैंने देखा है अल्लाह ताला की कुदरत को वैसा हुआ। तो इंसान की हालत तो ये है कि वो बड़ा थुड़दिला है ना, जल्दी गिव अप कर देता है, वो शायद शायद अल्लाह ताला की ताकत को अपनी ताकत की तरह समझता है कि मैं नहीं कर सकता तो पता नहीं ये अल्लाह ताला के लिए भी नाउजु बिल्ला कोई मुश्किल काम होगा। नहीं, जब कह दिया गया अला कुल्ली शैइन कदीर, तो कोई चीज बाकी रह गई, फिर इससे बाहर कोई चीज रह ही नहीं गई, कुल जब आ गया सब चीजों पर, और कदीर में वैसे ही एग्जेजरेशन है, और ये नहीं कि आज से वो कुदरत वाला है, हमेशा से है, उसकी कुदरत में कभी कमी नहीं आती कि वो आज तो कोई चीज करने के पे कादिर हो तो कल नहीं हो या नहीं था पहले, नहीं, जैसे इंसान है ना, अगर आज वो किसी पोजीशन पे है या आज ताकत के नशे में है या आज जवान है तो वो सोचता है आज मैं बड़ा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद जब बूढ़ा होता तो अब नहीं कर सकता, बच्चा था तब नहीं कर सकता था। अल्लाह ताला की कुदरत कभी भी कम नहीं होती, वो मुकम्मल कुदरत का मालिक है। तो उसकी कुदरत को समझें, पहचानें और इधर उधर गौर करें अपने इर्द गिर्द, और कुछ नहीं गौर कर सकते तो अपने अंदर झांक के देख लें, तो आपको अल्लाह ताला की कुदरतें नजर आएंगी। आदम अलैह सलाम से लेके आखिरी इंसान तक सोचें, हर इंसान के ये जो फिंगरप्रिंट्स है ना, ये यूनिक है। कभी आपने ये सोचा? अल्लाह ताला कितनी कुदरत वाला है। अपने जिस्म में गौर करें ना, हर चीज आपको गौर की गौर व फिक्र की दावत देती है। ये कभी सोचा कि इतनी सी जगह पे हर एक के यूनिक फिंगरप्रिंट्स, और उनके साथ ही अल्लाह ताला कयामत के दिन उठाएगा दोबारा। फिर ये जो बर्फ की बर्फ गिरती है, स्नोफ्लेक्स, आज साइंसदान कहते हैं हर स्नोफ्लेक डिफरेंट है, तो स्नोफ्लेक जो डिफरेंट है इसमें भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाता है ना। वो चाहता तो एक जैसा बना देता, लेकिन ज़ालिका लितअलमू अन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये इसलिए कि तुम्हें समझ आ जाए कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। मगर हम शायद कहीं और ही गुम रहते हैं, हम कभी ना कायनात पे गौर करते हैं ना अपने अंदर गौर करते कि हमें अल्लाह ताला की कुदरतें नजर आए। और बहुत आसान है ये देखना, सिर्फ गौर व फिक्र वाली नजर चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिक्र किया करते थे जो कि हम भी करते होंगे, जरूर आपने भी कभी कहा होगा, सुबह के वक्त वो जिक्र करना होता है जिसमें भी हम रोज दोहराते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। याद है को कौन सा जिक्र है वो बताइए? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, रोज हम कहते हैं, फिर भी हमें अल्लाह ताला की कुदरत पे यकीन नहीं, फिर भी हम इसको क्वेश्चन करते हैं। और कदीर का दूसरा माना कदर से तकदीर, तकदीर पैदा करने वाला, तकदीर बनाने वाला, कि हर चीज की तकदीर उसने पैदा की, उसने प्लानिंग उसकी है, उसका इल्म है, इल्म साबिक है। तो कौन कहाँ कब किसके घर में पैदा होगा, कैसा होगा, क्या क्या करेगा, कहाँ उसकी शादी होगी, क्या उसकी औलाद होगी, कहाँ मरेगा, सब लिखा हुआ है। ये इंसान की तकदीर, इसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला तकदीर बनाने वाला है। और इंसान ये समझ जाए अल्लाह ताला की ताकतों के आगे अपने आप को सरेंडर करे, ये कहते हुए कि अल्लाह मैं बेबस हूं, सारी ताकत सारी कुव्वत तेरी है, जब दुआ भी मांगे ना तो जहन में यही होना चाहिए कि अल्लाह तू कुदरत वाला है। इस नाम से हम ये देखें, अल्लाह तू कुदरत वाला है, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं अलकादिर नहीं हूं, अलकदीर नहीं हूं, तू है। जिस जब भी तो हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, जब हम ये कहते हैं तो क्या मतलब होता है? सारी ताकत सारी कुव्वत अल्लाह तेरे पास है, मैं कुछ नहीं, मैं कमजोर हूं, मैं हकीर हूं, मैं बेबस हूं, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरी जरूरत है, मैं कुछ नहीं हूं या अल्लाह, मैं जो ये काम करूंगी भी तो ये भी मेरी ताकत से मैं नहीं कर सकती, अल्लाह मुझे तेरी जरूरत है, तेरी मदद चाहिए। आप सोचें ऐसे जैसे कोई समंदर पे गया है, वहां तैरने लगा तो एक बड़ी लहर आई जिसमें वो बहता हुआ आगे चला गया और समंदर के बीचों बीच पहुंच गया, डूबने लगा, उस वक्त वो कैसे अल्लाह ताला को पुकारेगा बताएं? कैसे कहेगा? कितनी डेस्परेशन होगी, कितनी बेबसी होगी, उसको अपना आप नजर आएगा, मैं कुछ नहीं हूं, अल्लाह तू ही अब मुझे बचा सकता है, मैं तो नहीं बच सकता, तूने ना मुझे बचाया, मैं तो गया। उस वक्त उसकी कैसे चीखें निकलेंगी, उस वक्त वो कैसे अल्लाह ताला को पुकारेगा, उस वक्त उसकी बेबसी और मोहताजी कितनी ज्यादा होगी। तो इसी तरह इब्ने कुदामा कहते हैं कि तुम्हें इसी सोच के साथ अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए कि मैं जैसे डूब रहा हूं, मैं जैसे कुछ नहीं हूं, जैसे क्या मैं हूं ही नहीं कुछ, मैं बेबस हूं, अल्लाह मुझे तेरी जरूरत है, मैं पार लग ही नहीं सकता जब तक तू ना मुझे पार लगाए। इस तरह से इंसान को सारी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं, अल्लाह तू ही सब कुछ है, जैसे डूबने वाले को लग रहा है ना कि मेरी तो मैं तो खत्म, बस अब मेरा रब ही है जो मुझे चला दे, यही है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। जब आप ये कलमा पढ़ने लगे ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये जन्नत के खजानों में से है, जैसे आपको जन्नत का खजाना मिल गया हो, और इसके बदले में मिलेगा भी, तो आप अपने आप को इसी तरह इमेजिन किया करें कि जैसे मैं डूब रही हूं और मेरा कोई नहीं, दूर दूर तक मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, कोई सहारा है ही नहीं। अल्लाह मैं भी ताकत हूं, अल्लाह मैं कमजोर हूं, अल्लाह तू बचा ले। हाँ, और अपने आप को बिल्कुल ऐसे अल्लाह ताला के हवाले करें कि जैसे आप हेल्पलेस हैं और वो आपको थाम ले। तो आज का जिक्र भी जो मैंने आपको बता दिया, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला भी आप जिक्र किया करें, और ला इला इल्ला वाहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, बड़ा प्यारा जिक्र है, ये भी किया करें, क्योंकि इससे बड़ी मनाजिल मिलती हैं, बड़ी मंजिलें। मैंने इंसान सुबह को चाहे 10 दफा पढ़ ले या सारा दिन में 100 दफा कंप्लीट कर ले, अगर 100 दफा कंप्लीट कर लिया ना दिन में आपने, तो इतना आपको सवाब मिलेगा कि जैसे 10 गुलाम आजाद करना, 10 नेकियां, 100 नेकियां लिखी जाएंगी, 100 गुना मिट जाएंगे, और शैतान के शर से भी आप महफूज रहेंगे शाम तक। शाम को फिर करना होगा, और कयामत के दिन इससे बेहतर अमल कोई नहीं लाया होगा सिवाय उसके जिसने इससे ज्यादा पढ़ा। ये बहुत ही जबरदस्त जिक्र है। अब आते हैं दुआ की तरफ। दुआ आज वो वाली दुआ है जो कि हम चूंकि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, तो हम एक ऐसी दुआ आज मांगने के लिए जाते हैं जो सारी यानी परेशानियों को ख़त्म करने वाली, कोई आपके ऐसे मसले मसाइल है ना उनको ख़त्म कर देती है ये दुआ, और अगर आपके ऊपर कर्जा है तो वो भी ख़त्म कर देती है। इस दुआ के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद गए तो देखा आगे अबू उमामा बैठे हैं, ये अंसारी साहबी, नमाज का वक्त नहीं था और मस्जिद में इनका इस वक्त होना एक डिफरेंट बात थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप इस वक्त यहाँ पे क्या, इस वक्त तो नमाज का वक्त भी नहीं, तो क्या हुआ? फरमाया कि मुझे बहुत परेशानियाँ और मैं सख्त मकरूज भी हूँ। मेरे ख्याल में हम सभी शायद ऐसी चीज़ों का शिकार होते होंगे कि कई दफ़ा ऐसे होते कि इतनी परेशानियाँ आ जाती हैं, इंसान समझ नहीं आती क्या करे, और कहते मैं मकरूज भी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना सिखाऊं कि तुम इनको सुबह और शाम पढ़ो तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हारे कर्जे भी अदा हो जाएंगे। तो आप लोग रेडी हैं इसके लिए? अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न, ए अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले गम से भी और फिकरात से भी, आउज़ु बिका मिनल आजज़ी वल कसल और बेबसी से, बेबसी हो जाती ना इंसान के बस में ही नहीं कोई चीज़ होती, और सुस्ती से भी, तो उसके पास क्यों ना जाएं जो सारी कुदरतों का ताकतों का मालिक है, अलकदीर है, तो हम उसी की पनाह क्यों ना ले लें, वही हमें पनाह दे सकते हैं। आप पनाह लेते हैं तो किसके पास लेते हैं? बच्चे के पास तो जाते नहीं, ये बच्चा मुझे क्या पनाह देगा, इसका तो खुद भी कोई जोर नहीं। आप उसकी पनाह हमेशा लेंगे जो ताकतवर है, और अल्लाह ताला से बड़ी किसकी ताकत हो सकती है। वाउजुबी का मिनल जुबनी वल बुखल, अब कई जगह बुखल और जुबन आगे पीछे भी इस तरह से आया तो रिवायात में डिफरेंट है, यहाँ पे है जुबनी वल बुखल, बुजदिली से और बुखल से। वाउजुबी का मिन गलबत दैनी व कहर रिजाल, ए अल्लाह मैं कर्ज के बोझ से और लोगों के गलबे से, कि लोग मेरे ऊपर एम्पावर हो जाएं, ऊपर गालिब आ जाएं, इससे भी है अल्लाह ताला के कई लोग ऐसे होते हैं ना हमें सताने वाले होते हैं, वो ऊपर हमारे चढ़े जाते हैं, हमें समझ नहीं आती अल्लाह हम क्या करें, आप बेबस हो जाते हैं, और कई दफ़ा गम फिकरात परेशान रखती हैं, कभी सुस्ती की वजह से हम नेकियां नहीं कर पाते। तो इस दुआ के अंदर इतनी जामे दुआ है, इसमें कितनी सारी चीज़ें आ गई जो भी हमारे नेकियों के रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, या जो हमें बेचैन रखती हैं, जो परेशानियां हमारे जहन पे सवार रहती हैं, और बहुत दफ़ा लोगों का इतना जबर होता है, या ऐसे लोगों से हमें कोई डर होता है कि ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे, उनसे भी बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह ले लें। और बुजदिली से, बुखल से, बुखल भी बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ हर एक इंसान के साथ लगी हुई है, कोई कह नहीं सकता मैं इनमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं है, क्योंकि तो ये ज़िंदगी है, ज़ाहिर है इसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो इसलिए सुबह और शाम एक एक दफ़ा ये दुआ पढ़ लिया कर, मांग लिया करें, तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के शर से महफूज रखे। और आजकल हम जहाँ सुन्नत रातिबा पूरी करने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसका जिसको सुन्नत मौकेदा भी कहते हैं, जो 12 सुन्नतें हैं दिन की, जो हम उम्मीद है कि सब पढ़ते भी होंगे, अगर नहीं पढ़ते तो इनको पहले पढ़े। 12 सुन्नतें, सुबह 2 फजर से पहले यानी फजर की फर्जों से पहले, 4 सुन्नत जोहर से पहले, 2 सुन्नत जोहर के बाद, फिर 2 मगरिब के बाद और 2 ईशा के बाद। ये 12 हैं जो कि अगर आप पढ़ लेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है कि ऐसे शख्स को अल्लाह ताला जन्नत में महल अता फरमाएगा। तो आप जितने मर्जी महल बना लें, और अगर आप कुछ इजाफा इसमें करना चाहते हैं, यानी जो लोग पहले से ये पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ इजाफा कर सकते हैं ना, फिर वो जिनको इसकी आदत है। अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो पहले तो ये आदत बनाएं कि आप ये सुन्नते मौकेदा पूरी करें। और जो पढ़ते हैं वो इजाफा करना चाहते हैं तो आप वो थोड़ा थोड़ा करके इजाफा कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जोहर, जोहर के आप जोहर से पहले 4 रकअतें तो पढ़ते हैं और जोहर के बाद 2 पढ़ते हैं, तो 2 और ऐड कर लें जोहर के बाद, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जोहर से पहले 4 रकअतें पढ़ी और जोहर के बाद 4 रकअतों की पाबंदी की है, अल्लाह ताला उस पर जहन्नुम को हराम कर देगा। सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 ऐड कर दें तो आपको सुन्नत मौकिदा का अजर तो मिल ही रहा है, वो 12 तो आप पढ़ ही रहे हैं, 2 सिर्फ आपने और कर दें, यानी 4 सुन्नत, 4 फर्ज और उसके बाद फिर 4 सुन्नत पढ़ दें। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी पढ़ी थी और इनके बारे में ये फरमा दिया कि जो पाबंदी से करेगा ये, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर जहन्नुम को हराम कर देगा। तो इसलिए आसान है ये, और कितने छोटे छोटे काम है लेकिन इससे कितने दर्जे बुलंद हो सकते। इसी तरह छोटा सा अमल है, आप दिन में कई दफा कर सकते हैं और अपने गुनाहों को धो डाल सकते हैं, और वो है वुजू करना। जैसे जैसे आप वुजू करते रहते हैं, इस सोच के साथ करें कि अल्लाह ताला इस वुजू के साथ ही मेरे गुनाहों को झाड़ दे। जितनी दफा वुजू करेंगे, जब भी हम बाथरूम जाएं हम वुजू कर लें, ये नहीं कि हमने जरूरी नमाज ही पढ़नी है। वुजू इटसेल्फ एक नेकी है, ठीक है, अगर नमाज नहीं भी पढ़नी, इटसेल्फ एक नेकी, तहारत, पाकी, और ये भी कि गुनाहों को झाड़ने का जरिया। तो मुंह के ऊपर पानी बहाएंगे तो मुंह के गुनाह झड़ जाएंगे, कानों का मसा करेंगे कानों के गुनाह झड़ गए, हाथों के गुनाह झड़ गए, कुल्ली करेंगे मुंह के गुनाह, जुबान के गुनाह झड़ गए। तो इस तरह गुनाह झड़ते रहते हैं, ऐसे आमाल की कोशिश करते जाएं जिससे हम गुनाहों को झाड़ते ही रहें। हमें अल्लाह ताला किसी आजमाइश में भी ना डाले, हम आजमाइशों के काबिल नहीं है, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे गुनाह झाड़ दे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाए और हमें तौफीक अता फरमा दे, क्योंकि हम में ताकत नहीं, हम में कुव्वत नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अल्लाह तू ही अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू हमें ताकत दे, कुव्वत दे नेकियां करने की और नेकियों में दौड़ने की, ऐसी नेकियां जिनसे तू राजी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।